वसुदेव द्वारा सारी वस्तुएं कृष्ण को गोकुल ले जाने से पहले की भांति समंजन का लेने के पश्चात तथा सारे द्वार तथा किन्वार बंद कर लेने पर पहरेदार जाग गए और उन्हें नवजात शिशु का क्रंदन सुनाया। कंस शिशु जन्म का समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर रही रहा था कि पहरेदारों ने तुरंत आकर जानकारी दी कि शिशु उत्पन्न हुआ है। उस समय वो तेजी से अपनी सज्जा से उठ बैठा और चिल्लाया, अब मेरे जीवन का क्रूर काल उत्पन्न हो गया है। कंस चिंतित हो गया कि उसकी मृत्यु निकट आ गई है, अतः उसे रोमांच हो उठा। वो आया, वो अविलंब उस स्थान की ओर चला जहां शिशु ने जन्म लिया था। अपने भाई को आते देखकर देवकी ने कंस से अत्यंत विनीत भाव से प्रार्थना की, मेरे भ्राता, इस लड़की की मत मारो, मैं वचन देती हूँ कि ये तुम्हारे पुत्र की वधु बनेगी, अतः इसका वध न करो। तुम्हारा वध किसी कन्या तारा तो होना नहीं, यही आकाशवाणी है। तुम्हारा वध बालक द्वारा होना है, अतः कृपा करके इसका वध न करो। मेरे भाई, तुमने मेरे कितने सारे सूर्य जैसे प्रतापी नवजात शिशुओं का वध किया है, ये तुम्हारा दोष नहीं है। तुम्हारे आसुरी मित्रों ने मेरे पुत्रों को मारने की सलाह दी है, किंतु अब मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस कन्या को तो न मारो, इसे मेरी पुत्री बनकर जीने दो। किंतु कंस इतना क्रूर था कि उसने अपनी बहन देवकी की ये भी दर्द भरी प्रार्थना न सुनी। उसने अपनी बहन को डांटते हुए नवजात शिशु को बलपूर्वक छीन लिया और उसे निर्दयतापूर्वक पत्थर पर पटकना चाहिए। ये एक पूर्ण असुर का ऐसे सजीव उदाहरण है जो अपनी व्यक्तिगत तृप्ति के लिए सारे संबंधों की बलि दे सकता है, किंतु वो शिशु तुरंत ही उसके हाथों से फिसल गया और आकाश में जाकर विष्णु की अष्टभुजा अनुजा के रूप में प्रकट हुआ। वो सुंदर वस्त्रों, पुष्पमालाओं और आभूषणों से सुशोभित थी और अपनी आठों भुजाओं में धनुष, भल्ला, तीर, तलवार, शंख, चक्र, गदा तथा ढाल धारण किए हुए थे। तो मतलब ये कन्या कौन थी, ये कन्या थी जोगा। जोग माया और महामाया में अंतर क्या है? जोग माया अष्टभुजा है और महामाया दस भुजा। महामाया का दो हाथ ज्यादा है, क्यों? और दो हाथ में, और जो बाकी जो दो हाथ है उस दो हाथ में क्या रहता है? सांप रहता है जो है काल का प्रतीक, और त्रिशूल रहता है। तो त्रिशूल का मतलब क्या है? तीन प्रकार का शूल। शूल का मतलब ताप प्रदानकारी, और कौन? त्रिताप दुख। तीन प्रकार की जो कष्ट है, आदि आत्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये तीन प्रकार की क्लेश, क्लेश का प्रतीक है ये त्रिशूल। ये काल के द्वारा महामाया क्या करती है? महिषासुर को, वो सांप उसको पकड़ता है और उसको त्रिशूल के द्वारा महिषासुर को संहार करता है। तो माया असुरों को संहार करती है, किसके द्वारा? काल के द्वारा और त्रिशूल के द्वारा। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति ऐसे माया के अधीन है, माया के द्वारा नियंत्रित हो रहा है, और हमारे जो आसुरी वृत्ति है उसका संहार हो रहा है। जितना जल्दी जल्दी ये आसुरी वृत्ति का संहार हो जाए उतना ही अच्छा। माया का काम ये है कि आसुरों को संहार करे, आसुरों को संहार करके हमारे हर ऐसे महिषासुर कंस आदि असुरों हमारे बीच भी है, तो उसका संहार कैसे होता है? असुरों का सबसे अच्छा तरह संहार हो जाता है भगवान के शरण में। भगवान के शरण देने से सब असुरों भगवान संहार करते हैं। ये असुरों को संहार करने का क्षमता हम लोगों का हमारा नहीं है, ये बहुत ही बलवान है, ये सारे बहुत शक्तिशाली है। बल्कि आध्यात्मिक जगत में जो जगत जोग माया के नियंत्रण में है वहां काल और त्रिशूल का जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां कोई असुर नहीं है। आध्यात्मिक जगत में केवल भक्तों का ही प्रवेश करने का अधिकार है, असुर असुर वहां प्रवेश नहीं। इसलिए माया के हाथ को दो हाथ जो महामाया का है, जो एक भौतिक जगत का नियंत्रण करती है उनके रहता है, बल्कि आध्यात्मिक जगत का नियंत्रण का कार्य ही जो माया उनको उपयोग कर। कन्या को प्रकट होते देखकर जो वास्तव में देवी दुर्गा थी, सिद्ध चारण गंधर अफसर अफसरा की नर तथा उड़ग लोगों के सारे देवता गण उसे विविध वस्तुएं भेंट करने लगे और अपने अपने ओर से प्रार्थनाएं करने लगे। ऊपर से उस देवी ने कंस को संबोधित किया, अरे धूत, तू मुझे कैसा मार सकता है? तुझे मारने वाला बालक इस संसार में कहीं पहले ही प्रकट हो चुका है, तू अपनी बहन के प्रति इतना क्रूर मत बन। इस प्राकृत्य के बाद देवी दुर्गा विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से विख्यात हो गई। इन शब्दों के सुनकर कंस अत्यंत अत्याधिक भयभीत हुआ। सहानुभूति के कारण उसने तुरंत वसुदेव तथा देवकी के हाथ कड़ियां तथा बेड़ियां कटवा दी और अत्यंत विनम्र होकर उनसे बोला, हे बहन तथा बहनोई, मैंने अपने भंजों अपने शिशु का वध कर्तव्य की तरह आचरण किया है। मैंने आपके घनिष्ठ संबंधों की रंज मात्र भी परवाह नहीं की। मैं नहीं जानता कि मेरे इन वेशपूर्ण कार्य का क्या परिणाम होगा। संभवतया मुझे नरक का भोग करना पड़े जहाँ ब्रह्म हत्या करने वाले भेजे जाते हैं, किंतु मैं विष्णु रूप की आकाशवाणी सच नहीं पूछती। असत्य प्रचार केवल मानव समाज तक ही सीमित नहीं है, अब तो ऐसा प्रतीत होता है स्वर्ग देवता भी असत्य भाषण करते हैं। स्वर्ग के निवासियों की वाणी पर विश्वास करके ही मैंने अपनी बहन की शिशुओं का मार कर इतना पाप किया है। प्रिय वसुदेव तथा देवकी, आप दोनों ही महान आत्माएं हैं, मुझे आप दोनों से कुछ नहीं कहना, किंतु फिर भी मेरी प्रार्थना है कि आप अपने संतानों को मृत्यु के लिए शोक न करें। हम में से प्रत्येक व्यक्ति पराशक्ति के वश में है और वो पराशक्ति हमें एक साथ नहीं रहने देती। हमें कालक्रम में अपने मित्रों तथा परिजनों से विलग होना पड़ता है, किंतु हमें ये निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि विभिन्न भौतिक शरीरों के न रहने पर भी आत्मा अक्षत रूप में निरंतर बना रहता है। उदाहरणार्थ मिट्टी के अनेक पात्र हैं, वे पहले बनाए जाते हैं और फिर तोड़ दिया जाते हैं, किंतु तो भी मिट्टी सदा मिट्टी ही रहती है। इसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा के शरीर बनाए और बिगड़ जाते रहते हैं, किंतु आत्मा शाश्वत रह जाता है। अतः शोक करने की हर कोई बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि ये भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है और जब तक कोई इसे समझ नहीं लेता तब तक उसे देहांतर प्रक्रिया स्वीकार नहीं करनी होती है। मेरी बहन देवजी, आप इतने भद्र तथा दयालु हैं कि वह मुझे क्षमा कर दे। मैंने आपको संतानों को जो वध किया है, आप उनके मृत्यु से शोक संतप्त न हो। वास्तव में ये सब मैंने नहीं किया, क्योंकि ये सब पूर्व निर्धारित कार्यकला है। कितना सुंदर उपदेश दे रहा है। बल्कि जब वो सुना, ये आप उपदेश देता है मृत्यु से कुछ नहीं, ये होता है आत्मा शाश्वत है, ये मृत्यु का मतलब है शरीर को छोड़ना। बल्कि जब आकाशवाणी हुआ था कि देवकी का अष्टम संतान तुमको हत्या करेगा, तो देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल दी जाती। ये आश्विनी वृत्ति, असुर अपना कार्य साधन करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, या तो किसी को हत्या, अपना बहन को हत्या कर सकता है, और आत्मा अपना को रक्षा करने के लिए बहुत बड़े बड़े सुंदर वाणी थी बोल सकते हैं, जैसे यहाँ कर इतना सुंदर दार्शनिक वचन दे रहे हैं। बल्कि असल में हमारा कार्य के द्वारा निर्णय होता है हम सुन हैं या असुर हैं, ये हम संत हैं या राक्षस हैं, ये कार्य के अनुसार। हम जैसे कार्य करते हैं कार्य के अनुसार हमारा चरित्र का निर्माण होता है। मनुष्य को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कर्म करना होता है, भले ही वो अनिच्छा से क्यों न करें। लोगों की भ्रामक धारणा है कि शरीर के मृत्यु के साथ आत्मा भी नष्ट हो जाता है, अथवा वे सोचते हैं कि एक प्राणी दूसरे का वध कर सकता है। इन भ्रांत धारणाओं के कारण मनुष्य को संसार की परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, जब तक आत्मा की नित्यता का दृढ़ विश्वास नहीं होने को लेता, तब तक मनुष्य हंता मारने वाला तथा हन्यमान मारा जाने वाला तथा होता रहता है। हे मेरी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव, मैंने आप लोगों के प्रति जो अत्याचार किए हैं उन्हें क्षमा करती हूँ। मैं शुद्ध हृदय हूँ और आप इतने विशाल हृदय हैं, अतः मेरे ऊपर दया दिखाए और मुझे क्षमा करें। जब कंस इस प्रकार अपनी बहन तथा बहनोई से बातें कर रहा था, तो उसकी आंखों से आंसू की धारा और वो उनके चरणों पर गिर पड़ा। कंस ने जिस दुर्गा देवी के मां के देवी को मारने का प्रयत्न किया था उसी के वचनों पर विश्वास करते हुए उसने अपने बहनोई तथा बहन को तुरंत बंधन मुक्त कर दिया। उसने स्वयं उनके हाथ कड़ियां खोल दी और उनके प्रति परिवार की एक सदस्य की भांति वह सहानुभूति दिखाने लगा। जब देवजी ने अपने भाई के भाई को इस तरह पश्चाताप करते देखा तो वे शांत हो गई और अपनी संतानों के प्रति किए गए सारे अत्याचारों को भूल गई। वसुदेव जी विगत घटनाओं को विस्मरण करते हुए अपने सारे से हंस कर बोले, हे भाग्यशाली साधन, तुम भौतिक शरीर तथा आत्मा के विषय में जो कुछ कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक जीवात्मा जन्म से अज्ञानी है और वो अपने आप को भौतिक शरीर समझ बैठता है। ये देहात्म बुद्धि अज्ञान जनित है और इसी अज्ञानता के आधार पर हम शत्रुता या मित्रता पैदा करते हैं। शोक हर्ष भय ईर्ष्या लोभ मोह तथा उन्मान हमारे देहात्म बुद्धि के विभिन्न पक्ष हैं। इस प्रकार से प्रभावित मनुष्य भौतिक देह के कारण ही शत्रुता में प्रवृत्त होता है। ऐसे कार्यों में लग जाने के कारण हम भगवान से अपना शाश्वत संबंध भूल जाते हैं। वसुदेव ने कंस का उदारता का लाभ उठाकर उसे बताया कि उसके नास्तिक कार्यकलाप भी इसी देहात्म बुद्धि से जन्म है। देहात्म बुद्धि से जन्मी है। जब वसुदेव ने कंस से इस प्रकार ज्ञान पर बातें की तो वो अत्यंत प्रसन्न हुए और इससे उसे अपने भंजों को भिमाने के अपराध भावना कुछ कम हुई। अपने वाहन देवकी तथा वाहन मई वसुदेव से आज्ञा लेकर वो शांति चित्त अपने घर लौट आए। किंतु दूसरे ही दिन कंस ने सारे मंत्रियों को बुलाकर उनसे विगत रात्रि में जो कुछ घटा था कहा। कंस के सारे मंत्री असुर थे और थे देवताओं के परम शत्रु, अतः वे अपने स्वामी से रात्रि की घटनाएं को सुनकर उदास से हो गए। अधिक अनुभवी या विद्वान न होने पर भी वे कंस को इस तरह सलाह देने लगे, श्रीमन हमें चाहिए कि सारे नगरों कस्बों गांवों तथा गोचरों में विगत 10 दिनों में जितने बालक उत्पन्न हुए हैं उन्हें सबको मार दिया जाने का प्रयत्न करें। हमें चाहिए कि इस योजना को बिना किसी भेदभाव के कार्यान्वित करें। हमारा विचार है कि यदि हम ये कुकृत्य अत्याचार करेंगे तो फिर देवताओं को हमारे विरुद्ध कुछ भी करने का साहस नहीं हो सकेगा। वे हमसे युद्ध करने से सदैव डरते हैं और यदि वे हमारे कार्यों को रोकना भी चाहेंगे तो भी उनमें ऐसा करने का साहस नहीं जुट पाएगा। आपको आपके धनुष की अपार शक्ति से वे भयभीत रहते हैं। निस्संदेह हमें इसका अनुभव है कि जब जब युद्ध के लिए संगत होकर अपने उन पर बाणों की वर्षा की है तब तब वे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए चारों दिशाओं में भागे भागे थे। अनेक देवता आपसे युद्ध करने में असमर्थ रहे और उन्होंने तुरंत ही अपनी पगड़ी उतार कर तथा अपने बालों को ग्रंथियां खोलकर आपकी शरण ग्रहण की और हाथ जोड़कर आपने प्राणों की भिक्षा मांगते हुए कहा, हे स्वामी, हम हमें इस घातक युद्ध से गुजारेंगे। हमने कई बार ये भी देखा कि जब कभी शत्रु अत्यंत भयभीत हो जाते, अनेक धनुष उनके धनुष बाण तथा रथ विनष्ट हो चुके होंगे और वे अपने सैनिक कुशलों की कौशल को भूल कर लड़ने में असमर्थ हो जाते हैं। आप ऐसे शरणागत शत्रुओं का वध नहीं करते थे। अतः वस्तुतः हमें इन देवताओं से भयभीत नहीं होना चाहिए। इन लोगों को शांति काल में युद्ध भूमि से बाहर रहकर महान योद्धा होने का अत्यंत गर्व है, किंतु वास्तव में वे युद्ध भूमि में कोई कौशल या सैनिक शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकते। यद्यपि इंद्र समेत भगवान विष्णु, शिव जी तथा ब्रह्मा जी इनकी सहायता के लिए सदैव युद्धत रहते हैं, किंतु हमें उनसे डरने का कोई कारण नहीं है। जहां तक भगवान विष्णु का प्रश्न है, वे तो पहले ही जन 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 के हृदय में अंतर्हित हो चुके हैं और वे बाहर नहीं आ सकते। और शिव जी ने तो अपने सारे कार्यकलापों को परित्यक्त कर रखा है, वो पहले ही वनवासी हो चुके हैं। और ब्रह्मा है कि उन्हें नाना प्रकार की तपस्वियों तथा ध्यानों से फुर्सत नहीं मिलती। इंद्र तो आपकी शक्ति के समक्ष बिना तीन के जैसे हैं। अतः हमें इन देवताओं से डरने की कोई बात नहीं, किंतु हमें असावधान भी नहीं रहना, क्योंकि देवता हमारे कट्टर शत्रु हैं। हमें अपनी रक्षा करने के लिए सावधान रहना चाहिए। उनको समूह नष्ट करने के लिए हमें आपकी सेवा करनी चाहिए और आपकी आज्ञा को पालन के लिए सदैव सन्नद्ध रहना चाहिए। असुरों ने आगे कहा, यदि शरीर में कोई रोग हो और उसकी परवाह ना की जाए तो वो असाध्य बन जाता है। इसी प्रकार यदि इंद्रियों को छूट दे दी जाए तो उनके वश में कर पाना दुष्कर होता है। अतः हमें इन देवताओं से सदैव सावधान रहना चाहिए, अन्यथा ये दवाएं नहीं दबेंगे, ये दवाएं नहीं दबेंगे। देवताओं की असाधारण शक्ति तो भगवान विष्णु है, क्योंकि सारे धर्मों का परम लक्ष्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। वैदिक आदेश ब्राह्मण, गाय, तप, त्याग, दान, पुण्य, ये सारे कृष्ण भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हैं। अतः हमें चाहिए कि हम तुरंत ही उन सारे ब्राह्मण का, जो वैदिक ज्ञान की नीति है, तथा उन विष्णुओं का वध करना प्रारंभ करें जो अनुष्ठान कार्य को संपन्न करने में लगे हुए हैं। हमें सारे गायों को वध कर देना चाहिए। जो माखन की स्रोत है, ताकि यज्ञ के लिए घी ना मिल सके। कृपया हमें इन समस्त प्राणियों का वध करने से अनुमति प्रदान करें। वास्तव में ब्राह्मण, गाय, वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, इंद्रिय तथा मन का संयम, स्वामी भक्ति, दान, सहिष्णुता तथा यज्ञ, ये ही भगवान विष्णु के दिव्य शरीर के अंग स्वरूप हैं। भगवान विष्णु सबों के हृदय में विद्यमान है और वे शिव तथा ब्रह्मा सहित समस्त देवताओं के नायक हैं। मंत्रियों ने कहा, हमारे विचार से भगवान विष्णु को मारने के लिए समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों को दंड दिया जाए। इस प्रकार असुर मंत्रियों द्वारा मंत्रणा किए जाने पर महाभूत कंस ने, जो स्वर्गभक्ष अनंत काल की हथकड़ी बैरिया में जकड़ा था, ब्राह्मणों तथा विष्णु को दंडित करने का निश्चय किया। उसने असुरों को आदेश दिया कि वे सभी साधु पुरुषों को सताएं और तब वो अपने घर चला गया। कंस के अनुमति रजो तथा तमो गुणों के प्रभाव में आ गए और उनका एकमात्र कार्य बन गया साधु पुरुषों से शत्रुता करना। ऐसे कार्य से मात्र जीवन अवधि घटती है, जीवन अवधि घटती है। असुरों ने इस क्रिया को मानो त्वरित करके अपने मृत्यु को बुलावा दे दिया। साधु पुरुषों को दंडित करने का परिणाम केवल असामयिक मृत्यु ही होना तो नहीं होता। ये कार्य इतना घातक होता है कि कर्ता क्रमशः अपना सौंदर्य, अपना यश तथा धर्म को देता है और उसके उच्च लोकों में जाने की प्रगति रुक जाती है। विविध प्रकार के मनोरथों के वशीभूत होकर ये असुर सभी प्रकार की शुभ कार्य को क्षीण बना लेते हैं। भक्तों तथा ब्राह्मणों के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध से भी बड़ा होता है। ये वो सभ्यता जो ऐसी पाप कर्म करती है, सामान्यतः भगवान में श्रद्धा खो देती है और ऐसी ईश्वर विहीन सभ्यता मानव समाज में विपत्तियों का घर बन जाती है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कंस द्वारा उत्पीड़न नामक चतुर्थ अध्याय का ये अध्याय का अगर विषय सब आप समझे, समझने में कोई असुविधा नहीं हुआ, मेरा उच्चारण ठीक था, आपका अगर दिक्कत नहीं हुआ तो मेरा भी खुशी हो गया। ये कृष्ण बुक, ये लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ये जो ग्रंथ है, ये श्रीमद् भागवत का अनुवाद है। श्रीमद् भागवत का दशम स्कंध का अनुवाद, दशम स्कंध में भागवत का दशम स्कंध में कृष्ण लीला का वर्णन है, कृष्ण का वर्णन दशम स्कंध में, और ये दशम स्कंध ही भगवान श्रीमद् भागवत का मूल अंश। सारे भागवत भगवान का शरीर, भागवत में कितने स्कंध हैं? 12 स्कंध। ये 12 स्कंध भगवान का शरीर का 12 अंग है। इसका वर्णन ऐसे हुआ कि प्रथम और द्वितीय स्कंध है भगवान के चरण कमल, तृतीय और चतुर्थ है भगवान की जगह, पंचम स्कंध है भगवान का उदर, षष्ठ स्कंध भगवान का पक्ष, सप्तम और अष्टम स्कंध है भगवान के बाद, नवम स्कंध है भगवान का कंठ और दसम स्कंध है भगवान का हास्य। तो व्यक्ति का परिचय, असल परिचय क्या है? शरीर है, उनके शरीर में कौन सी स्थान, कौन सी अंग सबसे शरीर का मुख्य अंग होता है? मुख मंडल। इसलिए दशम स्कंध ही भगवत का मूल अंश और एकादश स्कंध है भगवान का कपाल और द्वादश स्कंध है भगवान का शरीर। तो ऐसे भगवान का शरीर द्वादश स्कंध में, भागवत रूपी द्वादश स्कंध में, मतलब अगर हम श्रीमद् भागवत का पूरा समझ लेते हैं द्वादश स्कंध के द्वारा, तो हम भगवान को पूर्ण रूप से पहचानेंगे। भगवान को समझाने के लिए, भगवान को परिचय प्रदान करने के लिए ही है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत के माध्यम ही हम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को जान सकते हैं। तो ऐसे एक एक अध्याय के द्वारा हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण। ये चतुर्थ अध्याय में भगवान के बारे में कुछ ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, बल्कि ये हम देख रहे हैं कि असुरी वृत्ति कैसा होता है। जो असुर हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, उनका मनोभाव, उनका असल चाहना क्या होता है, असुरों का क्या चाहना है, असुर लोग क्या चाहते हैं, असुर लोग इस जगत को भोग करना, उसका जीवन का उद्देश्य होता है कैसे इस जगत को भोग करना, और भोग करने के लिए वो इस कोई भी कार्य करने के लिए तैयार है, और अपने मृत्यु को रोकने के लिए वो भी क्या कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम है, समर्थ है। चाहे अपना बहन को मारे, चाहे अपना भाई को मारे, चाहे अपना पिता को मार डाले, माता को मार डाले, असुर लोग की करने में कोई आवश्यकता नहीं, कोई भी बुरा काम करने में, कोई पाप काम करने में उसका कोई संकोच नहीं। यह है असुरी, और असुरों का प्रतीक है ये काम। श्रेष्ठ असुर असुरों में से एक सबसे बढ़कर है, और कंस का आचरण से हम देखते हैं पहले से वो क्या चाहता है। जब वो सुना कि भगवान के हाथ से उसका मृत्यु हो, भगवान को भी याद नहीं था किसी के द्वारा उसका मृत्यु हो, तो अपना मृत्यु को रोकने के लिए वो अपना बहन को भी मारने के लिए तैयार। हम सोच सकते हैं ये तो कंस ने किया, बल्कि साधारणतः ऐसी कार्य कभी नहीं करता, मैं कभी नहीं करता, बल्कि हम अगर भौतिक जगत की जो प्रभाव है उसके द्वारा अगर प्रभावित हो जाएंगे तो ऐसे कार्य हम लोग भी करते आजकल हो रहा है। 10-20 साल पहले जो कार्य आदमी लोग नहीं करना चाहते आज वो काम एकदम निसंकोच, कोई संकोच के बिना लोग कर रहे हैं। जो ये क्यों हो रहा है, ये भौतिक जगत का प्रभाव, भौतिकवाद का प्रभाव जितना मनुष्य को प्रभावित करेगा, मनुष्य का वृत्ति उतना ही आसुरी। आजकल का जगत कैसा बना है, नास्तिक बन गया है ना, अधिक से अधिक आदमी नास्तिक बन गए, भगवान को नहीं मानते। यहां का जो शिक्षा जो है वो ये सबको आसुरी बनाना है। शिक्षक क्या है, भगवान क्या है, भगवान नहीं है। स्कूल कॉलेज में क्या शिक्षा मिलता है, भगवान नहीं है। विज्ञान है, विज्ञान के द्वारा हम सब कुछ कर सकते, विज्ञान के द्वारा हम मृत्यु को जय करेंगे, ये उसमें उन्होंने ये प्रोपागैंडा चला। मृत्यु को जय कर सब अमर बन जाए, किसी को मृत्यु नहीं, बल्कि अब तक हुआ है मृत्यु का संख्या, मृत्यु का रेट आर कम रहा है या बढ़ रहा है, और अंत में क्या होगा, जब विश्व युद्ध होगा, लड़ाई होगा, तो एक दो दिन में सारे दुनिया एकदम शांत हो जाए। आजकल का जो अस्त्र है वो कैसा अस्त्र है, आणविक अस्त्र, एटॉमिक न्यूक्लियर। ये अस्त्र क्या करता है, एक बॉम्ब एक शहर को ध्वंस कर देता है, एक बॉम्ब मतलब एक पल में सारे शहर ध्वस्त हो जाता है। ऐसा छोटा मोटा शहर, उज्जैन जैसा छोटा मोटा शहर, मुंबई जैसे बड़े शहर, एक बॉम्ब सारा शहर को और ऐसे कितने सारे बॉम्ब है पता है आपको। मैं सुना था लगभग 15 साल पहले इस पृथ्वी को 30 बार ध्वंस करने के पास जमा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 30 बार, और वो भी 15 साल पहले का बात। तो आज कितना कितना बार, करीब 100 बार पृथ्वी को ध्वंस करने का अस्त्र सब जमा हुआ, ऐसा रखा हुआ, और एक बटन दबाने से बस वो निकल जाए, ऐसे रखा है, जिसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। ये रॉकेट में वॉरहेड बॉम्ब जो है वो रॉकेट के ऊपर जाहिर कराता है, और ये रॉकेट एक महादेश से दूसरा महादेश में जाकर गिर सकता है। जैसे यूरोप से छोड़ेंगे अमेरिका में जाकर, ये क्या कोई असंभव है? प्लेन तो जाता है, अगर प्लेन यूरोप से अमेरिका जा सकता है तो रॉकेट क्यों नहीं जा सकते? रॉकेट तो और भी जल्दी जाएगा। ये प्लेन जितना तेज जाता है, ये एक रॉकेट उसे 3 से 5 गुना अधिक वेग से जाता है। तो यूरोप से अमेरिका जाने में लगभग 6 घंटा लगता है, तो ये 1 से 2 घंटे के बीच या यूरोप से अमेरिका। तो ये जो सब बना रहा है, ये मारणास्त्र, संहारकारी अस्त्र, इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम क्या पृथ्वी में शांति लाएगा? तो ये भौतिकता, भौतिकवाद का परिणति। बल्कि और एक विचार है, ये विचार भी हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। एक बार ये एटमिक वॉरफेयर का परिणति के बारे में चर्चा हो रहा है, प्रभुपाद जी के साथ उनका भक्त होगी विशेष, तो वो लोग अमेरिकन यूरोपियन शिष्य, तो उन्होंने प्रभुपाद को बोल रहा था कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, तृतीय विश्व युद्ध हो जाए, दो बार तो हो चुका है, पहला विश्व युद्ध और दूसरा, बल्कि तीसरा विश्व युद्ध जो होगा वो जैसे ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर विल अपीयर टू बी लाइक चाइल्ड्स प्ले, एक बच्चे का, व्हाट विल बी द हिंदी एक्सप्रेशन फॉर चाइल्ड्स प्ले, क्या चाहिए? बच्चे का खेल, बच्चों का खेल जैसा होगा, क्योंकि ये इतना भयंकर होगा, क्योंकि वो विश्व युद्ध का, द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्ति कैसे हुआ था? दो एटम बॉम्ब, ये वो डर गए, ये तो ये दो बॉम्ब दो शहर को ध्वंस कर दिए, तो वो दो बॉम्ब जो था वो भी बच्चों का खिलौना जैसे, क्योंकि आजकल का जो न्यूक्लियर वेपन बन रहा है उसकी तुलना से वो जो एकदम छोटा सा है पहला बॉम्ब, और वो ये और एटम बम का, न्यूक्लियर वेपन का परिणति क्या होता है? जहां गिरेगा वहां केवल ध्वंस नहीं होगा, रेडियो एक्टिविटी वो वैसे वातावरण में फैल जाएगा, और जहां भी वो जाएगा सब ध्वंस कर देगा, मतलब केवल 50-60 किलोमीटर का जहर ही नहीं नष्ट होगा, 500-600 किलोमीटर प्रभाव रहेगा, वहां सब कुछ जल जाएगा, कुछ वृक्ष नहीं रहेगा, पेड़ पौधे नहीं, और सब प्राणी का तो मृत्यु हो जाएगा, कोई जिंदा भी रहा तो खाने का कुछ नहीं मिलेगा, इतना भयंकर होगा। बल्कि प्रभुपाद जी ने बोलने लगा कि नहीं, कृष्ण का सृष्टि इतना आसानी से परिणाम नहीं कर सकती। तो बल्कि वो लोग बताने लगे, नहीं प्रभुपाद ऐसा होगा ऐसा होगा। प्रभुपाद भी बोलने लगा, कृष्ण का सृष्टि कोई भी इतना ऐसे नष्ट नहीं कर सकता जब तक कृष्ण ना जाए। तो ऐसे बोलने लगा। तो बाद में अंत पेश में प्रभुपाद उसको बताया, तुमको पता नहीं है देवता को शक्ति, एक पल भर दुनिया में जितना सारे ये हुआ है, जो हानि हुआ है, जो धन कार्य हुआ है, वातावरण में जितने सारे रेडियो एक्टिविटी बना है, देवताओं ने एक पल में उसको सब साफ कर सकते। दैट इज दिलिटी ऑफ द देवताओं का शक्ति इतना सीन है, पल भर में वो सारे वातावरण को साफ कर सकते। और भगवान अगर रक्षा करना चाहते हैं तो उसको कौन करना। असत हमारे परीक्षित के परीक्षित को हत्या करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, और ये ब्रह्मास्त्र सारे द्वितीय वेपनों से हजारों गुण करोड़ों गुण अधिक शक्तिशाली। बल्कि परीक्षित तो कुछ हो नहीं, क्योंकि भगवान सुरक्षा। हमें इसलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान हैं और उनको शरण लेने से कुछ भी खतरा नहीं है। भगवान जिसको रक्षा करते हैं उसको कोई कुछ नहीं। प्रहलाद महाराज को मारने के लिए कितना प्रयास किया, कुछ कर पाए। और प्रहलाद का ही पिता वो अमर बनने का कितना कोशिश किया, अमर बन सकता। तो भगवान जिसको मारना चाहता है उसको कोई रक्षा नहीं करता, और जो भगवान जिसको रक्षा करेंगे उसको कोई। इसलिए भगवान को शरण लेना चाहते। शरण हम कब ले सकेंगे, जब तक पूरा विश्वास होगा कि भगवान है। अगर हमको विश्वास नहीं रहेगा तो कैसे हम उनको शरण। तो पहली चीज विश्वास लाना चाहिए, और ये विश्वास जो है ये विश्वास के अंधा नहीं होना चाहिए, अज्ञान नहीं होना। ज्ञान पूर्वक ये विश्वास कि भगवान है, विचार करके देखो भगवान है क्या नहीं। तो इसलिए ये आध्यात्मिक विषय का चर्चा होना चाहिए, विचारवान व्यक्तियों को इस विषय का चर्चा करना चाहिए। और भगवान को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा ये भौतिक वस्तु और आत्मा ये दोनों में अंतर है क्या। आत्मा है, आत्मा है ये पहले तो विचार ये हो, आत्मा है क्या। हम देखते हैं कोई शरीर जिंदा है, वो क्या आश्रय के कार्य कर रहा है, चेतन है उसका शरीर में क्या कितना अद्भुत कार्यकलाप हो रहा है। और ये शरीर से जब आत्मा चला जाता है तब शरीर मर जाता है, शरीर का सारे कार्यकलाप स्टॉप हो जाता है। आजकल का लोग विज्ञान विज्ञान कहते हैं, हम अगर विज्ञान के विषय में भी हाँ ये करेंगे विचार करेंगे तो हम देखते हैं कि अच्छा एक ये सरल विचार हम ऐसे कर सकते हैं जो कि उसने पहले में बताया था। केमिस्ट्री में दो प्रकार की वस्तुएं हैं, दो प्रकार की वस्तु ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये सबको पता है ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, इनऑर्गेनिक जो भौतिक वस्तु है, जैसे मून में जो जैसे मेटल जो एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो साधारण जो रासायनिक पदार्थ है, ये है इनऑर्गेनिक। जैसे ये क्या है, ये चांदी है। चांदी एक प्रकार का वस्तु है जो जो है सिल्वर, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर वेरी सिंपल। वैसे ये जो पानी है, ये पानी क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना पानी। ऐसे बहुत सारी चीजें जो है ये सब इनऑर्गेनिक है, वो सिंपल है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसका कंपाउंड जो होता है साधारण कार्बन डाइऑक्साइड एमोनिया और जो एसिड होता है नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजोरिक एसिड, ये सब है ऑर्गेनिक वस्तु या ऑर्गेनिक हम सॉरी इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ऑर्गन ऑर्गेनिक का मतलब है जिसमें जीवनी शक्ति है सुमूल भाव में, इनऑर्गेनिक का मतलब जिसमें जीवनी शक्ति नहीं है, और ऑर्गेनिक का मतलब है जिसमें जीवनी शक्ति। अच्छा, जैसे हम लोग और जीवनी शक्ति का जो ऑर्गेनिक जितने सारे कंपाउंड है, जहां जीवन है उससे ऑर्गेनिक का उत्पत्ति होती है। अच्छा, जैसे एक वस्तु है चीनी, चीनी का जो कॉम्बिनेशन है, चीनी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। चीनी का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, C6H12O6, मतलब छह एटम्स कार्बन का, छह एटम और पानी का छह मॉलिक्यूल्स। पानी का होता है H2O, सो H12O6 का मतलब है छह मॉलिक्यूल पानी। तो एक कार्बन और छह मॉलिक्यूल पानी मिलकर होता है एक शुगर का शुगर। अच्छा, ये कहां बनता है, आंख का जो पेट उसमें होता है ना, वहां से मिलता है शुगर। कहां से मिलता है, गन्ने का रस से मिलता है, गन्ने का पेट से उसका ये होता है। अब तक लैबोरेटरी में कोई भी वैज्ञानिक छह कार्बन का मॉलिक्यूल एटम्स लेके और छह वाटर मॉलिक्यूल लेकर शुगर नहीं बना, कोई भी नहीं बनाया। अगर होता तो शुगर का दाम वो एक पैसा करके अच्छा, जो गैस हम जलाते जलाते हैं मीथेन गैस या प्रोपेन गैस, ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। मीथेन का स्ट्रक्चर क्या है, एक कार्बन और चार हाइड्रोजन। तो कार्बन तो बहुत है, कोयला तो बहुत है और हाइड्रोजन भी बहुत है, तो ये दोनों मिलाकर लैबोरेटरी में कोई भी आज तक मीथेन नहीं, मीथेन गैस नहीं बना। मीथेन गैस कहां बनता है, और जमीन का नीचे कहां, कैसे बनता है मीथेन, जो पेड़ पौधे से वो जब सड़ जाता है बहुत सालों के कारण तब मीथेन। तो इसका मतलब क्या है, पेड़ पौधे का मतलब है जहां जीवन है, गन्ने का पेड़ क्या है, जीवन है। अच्छा, ये तो सरल ये हम दिखाए, और जो कॉम्प्लेक्स बहुत गहरा जो ये है वो कैसा है, जैसे हमारा हम क्या खाते हैं, थोड़ा सा शक्कर खाया, थोड़ा सा चावल खाया, थोड़ा सा सब्जी खाया, थोड़ा सा पानी पिया, वो पेट में गया। ये भी जो कंपाउंड जो है इसका ही रिलेटिवली सिंपल कंपाउंड, पेट में गया, पेट में जाकर क्या बना, सेल बन, बॉडी सेल। और एक बॉडी सेल्स इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसको फॉर्मूला आप लिखेंगे तो कोई दो चार दिन लंबा एक कागज आपको लगेगा उसको। तो ये कैसे हो रहा है? ये जब ये जो अद्भुत एक मनुष्य का शरीर में जो फैक्ट्रीज हैं वो सारा दुनिया भर दुनिया के सारे फैक्ट्रीज इकट्ठा करने से भी इसका बराबर नहीं है। तो ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है? जब तक आत्मा शरीर में है तब तक ही ये हो रहा है। जब आत्मा निकल जाता है तब होता है, जब आत्मा निकलता है तब पेट में खाना जो है हजम होता है नहीं। जब पेट में है तो ऐसे देखिए आत्मा का प्रभाव कितना अद्भुत है। तो ये जो अद्भुत कार्यकलापकारी जो आत्मा है उसके बारे में जानना जरूरी है क्या? तो जो ज्ञानवान है वो विचार करेंगे ये भौतिक जगत का वस्तु है ये शरीर और ये है आत्मा, ये दोनों में अंतर क्या है इसको हम विचार करेंगे। क्योंकि जो नास्तिक है उसका असुविधा ये होता है कि वो आत्मा को नहीं मानते, वो बोलते हैं सब भौतिक है। आत्मा को उत्पत्ति भौतिक रासायनिक क्रिया से हुआ है, केमिकल कॉम्बिनेशन से अचानक आत्मा को उत्पत्ति हुआ। तो अगर केमिकल कॉम्बिनेशन से आत्मा को उत्पत्ति हुआ है, तुम्हारा इतने सारे बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं लेबोरेटरीज हैं तो वहां दो चार आत्मा बना के दिखा दो। केमिकल कॉम्बिनेशन का तो कोई कमी नहीं है, सारे ऑल द केमिकल्स यू हैव, दुनिया में कितने सारे केमिकल्स हैं उसका तो कोई कमी नहीं और तुम्हारा लेबोरेटरी भी बहुत शानदार बनाए हो तो वो दो चार आत्मा तैयार करके दिखा दो कि केमिकल से कैसे आत्मा को उत्पत्ति होता है। अब तक कोई किसी ने आत्मा को उत्पत्ति कर सका है? वो बोलता है हम जीवन बनाएंगे लेबोरेटरी में, जड़ भौतिक पदार्थ से हम जीवन को बनाएंगे, बोलते हैं ना। कब बनाएंगे? कब ये परसों? बल ये कल या परसों अब तक नहीं है, हजार कोई साल से वो लोग बोल रहे हैं कि हम बनाएंगे बल्कि आज तक कुछ नहीं बनाए। तो मेरा कहना ये है कि ठीक है आपको जीवन बनाना नहीं होगा, एक दाना चावल बना दीजिए, एक दाना चीनी बना दीजिए, एक दाना गेहूं बना दीजिए, ऐसे एक गेहूं बनाइए, गेहूं का एक दाना जो जमीन पर गिरेगा और एक गेहूं का पौधे उपजेगा उससे और उस पौधे में 200-400 गेहूं का दाना जमा होगा। ऐसे बनाए कोई? वो बोला कि हम जीवन बनाएंगे, मैं बोला एक गेहूं बनाओ नहीं तो एक अंडा बनाओ, वो अंडा भी नहीं बना सकता। तो ये कहते हैं कि सारे वैज्ञानिक ये मूर्ख है, ये सब मूर्ख है और ये आसुरिक मनोभाव वाले और इन लोगों ने दुनिया को नास्तिक, इन लोगों के प्रभाव से दुनिया आज नास्तिक बन गई और नास्तिक बनने के कारण क्या होगा दुनिया का हाल आज देखिए। मनुष्य का मन का शांति नष्ट हो गया, रहने का खाने का शायद थोड़ा सा ये हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है, उन्नति हुआ है, बल्कि जीवन का जो स्थिति उसको परिवर्तन हो, मन की भावना तो परिवर्तन हो। तो इसलिए जो बुद्धिमान है वो थोड़ा विचार करेंगे। मैं तो बोलता हूं कि ठीक है भगवान के बारे में सोचने का जरूरत है, केवल आत्मा और शरीर में क्या अंतर है ये थोड़ा विचार करेंगे। ये अगर समझेंगे कि आत्मा शरीर से अलग है और आत्मा के कारण शरीर में जीवन है और आत्मा और ये शरीर में अंतर क्या है, शरीर नाशवान है आत्मा अविनाशी, शरीर को हम नष्ट कर सकते हैं बल्कि आत्मा को कभी कोई, शरीर को हत्या कर सकते हैं आत्मा को कोई मान। ये जो आत्मा के बारे में अगर हम जानने का कोशिश करते हैं और सही रूप से आत्मा ज्ञान लाभ करने का कोशिश करते हैं तो हमें धीरे धीरे पता लगता है कि आत्मा इस भौतिक जगत का वस्तु नहीं है। इस भौतिक जगत का वस्तु नहीं है मतलब ये प्रमाण होता है कि और इस भौतिक जगत के परे और कोई जगत है जहां से आत्मा आया है? ऐसे कोई जगह होगा जहां से आत्मा आया है? तो चलो वहां जाके जाकर देखता है क्या है, कैसा है वो जगह। तो वहां अगर हम जाएंगे तो पूरा हमें पता चलना है। और वहां जाने के पश्चात हम क्या देखेंगे? वहां सब चेतन है, चिन्मय है और सारे चेतनाओं का केंद्र है, स्रोत है। हरे कृष्ण श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो ऐसे अगर चलता रहता तो ऐसा एक समय आता था कि जब कोई सारे ऑक्सीजन खत्म हो जाते हैं, बल्कि अनादिकाल से क्या ये हो रहा है। आज कितने सारे आदमी, कितने सारे जानवर, कितने सारे पंछी, कितने सारे मछलियां सब ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, बल्कि इसका कभी तो कमी नहीं हो रहा है। क्यों? हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये बताइए, ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस, ये जो आयोजन कौन की? भगवान। तो भगवान को मानना क्या कोई कठिन काम है? कठिन ये है कि हमको पहले सरल बनना। जब हम जटिल हो जाते हैं तभी मुश्किल हो जाते। भगवान को जब हम ये कर लेते कि नहीं भगवान हम नहीं, जो हम देखते नहीं उसको हम नहीं विश्वास करते, ये जब हमारा मनोभाव हो जाए तभी मुश्किल हो।
लेबोरेटरी में तुम पानी को
पानी को आप इलेक्ट्रोलाइसिस करके पानी को हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना सकते हैं, बल्कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला भी पानी बनाना हाँ ये बहुत ही महंगा प्रोसेस होगा। अगर वो बना सकता था तो सहारा मरुभूमि सहारा नहीं रहा, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस करके देख सकते हैं कि ये बनाना कितना बनाएगा, एक बॉटल पानी का या मालूम है कितना दाम होगा था, वैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बनाना है। और ये एक सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एलिमेंट, ये ऑर्गेनिक नहीं, ये पानी ऐसा सिंपल पानी बनाने में एक बॉटल का दाम शायद 1 करोड़ रुपए है। यस
Not provided.
It is stolen away by Maya. Maya, opportunity. They didn't provide them with intelligence. They stole their intelligence. So apparently it looks like they are very intelligent. But they don't. There's a bolt on a cobra in which they खाली रह गए क्यों और माया या और माया ने उसको अपहरण किया, माया के द्वारा भ्रमित होकर अपने बुद्धि को खो गए। जैसे बोलते हैं देखिया ना देखे जो इच्छे गुरु के लोग, जैसे ये उसको हाउस क्या हिंदी क्या है बुद्ध, उल्लू जैसा कुछ नहीं देखता है, दिन के वक्त उल्लू देखता है। तो हिंदी में भी एक शब्द होता है उल्लू, जैसा उल्लू बन गए। जब भी सामने देख रहा है फिर भी देख रहा है कि सूरज को उदय हो रहा है, निर्दिष्ट समय में सूरज को उदय, सूरज का अस्त हो रहा है, देख रहा है वातावरण में कैसा परिवर्तन हो रहा है, देखता है पेड़ में कैसे कली आता है आती है फूल फल होती है कम होती है। ये एक आश्चर्य कार्य नहीं, बल्कि फिर भी वो लोग नहीं देखते। क्यों? क्योंकि उसके अहंकार के कारण, दम के कारण वो भगवान को नहीं स्वीकार कर सकते। हरे कृष्ण
का ये कंप्यूटर
गुरु महाराज
उस पर कर रहे हैं, घर से भी आए और यहाँ पे भी नहीं है।
मैंने तो सुनी वाई ही एचपी है वाई मोबाइल जरूर ले रहा
यार नीचे पड़ा और ये नीचे नीचे मिल गया, बाजार जाने का जरूरत ही नहीं पड़ा, नहीं मिल गया ये मिल गया बाजार का जरूरत ही नहीं पड़ी, लेके आता हूँ टेस्ट कर लेते हैं।
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.